उपस्थित सुधीजनों देवियों, अब हम विषय पर आते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे अध्याय का ये हम नौवां भाग चल रहा था। हमने पिछले बार अहिंसा के ऊपर, उसके बाद सत्य के ऊपर चर्चा की। स्वामी जी ने जो यम और नियम की चर्चा की थी, उस यम के प्रसंग में तीसरा यम है जो रिस्ट्रेंट से, उनमें जो तीसरा है वो अस्तेय, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग या अब्स्टिनेंस फ्रॉम थेफ्ट, जिसको कहते हैं चोरी ना करना। जनरली हम जो सोचते हैं कि चोरी ना करने का मतलब है जो जो चोर है, जो डाकू है, वही चोर हैं। अरे ये कोई सोशल इश्यू नहीं है कि इसको सोसाइटी में इस पर डिस्कस किया जाए, पर हमारे शास्त्रकारों ने इसको बहुत बहुत बारीकी से इसको सोचा है और उस पर विचार किया है। तो क्या है चोरी का, क्या डेफिनेशन है? स्तेय, ये पतंजलि योग दर्शन में जो व्यास भाष्य है, महर्षि व्यास लिखते हैं, स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। चोरी का मतलब होता है गैर कानूनी ढंग से, अनलॉफुली, दूसरे के सामान को, दूसरे का मतलब जो मेरा नहीं वो किसी का भी हो, वो किसी इंडिविजुअल का हो, किसी सोसाइटी का हो, या नेशन का हो, या ईश्वर का हो, या नेचर का हो, किसी के भी संपत्ति को जब इलीगल में यूज करूं, अननेसेसरी यूज करूं, दैट इज कॉल्ड थेफ्ट। और इसी से बचने का नाम को हम अस्तेय कहते हैं, चोरी ना करने की भावना। पिछले बार हम जो सच की बात कर रहे थे, ये सत्य का एक एक प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो अस्तेय है। सत्य वाणी से रिलेटेड है और मन से रिलेटेड है। उसी सच्चाई को, सच को जब हम अपने शरीर से इंप्लीमेंट करते हैं तो वो अनेस्टिक, वो अस्तेय के रूप में आता है। इसके अलग अलग फॉर्म है, उसको चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में इसको, चोरी को किस रूप में लिया जाता है। तो मनुस्मृति में महर्षि मनु लिखते हैं, द्विविधां तस्करान् विद्यात् परद्रव्यापहारकान् प्रकाशांश्च प्रकाशांश्च चारचक्षुर्महीपतिः। दूसरे के धन या संपत्ति को हड़पने वाले, दूसरे का मतलब सिर्फ कोई इंडिविजुअल नहीं, कोई सोसाइटी, देश, कुछ भी, हड़पने वाले दो तरह के चोर होते हैं, मतलब दो तरह की चोरी होती है, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सामने करते हैं, जो पब्लिक में करते हैं, और जो छुप कर करते हैं। पब्लिक में जनरली वो लोग हैं, प्रकाश वंचकास्तेषां नान्या नाना पन्नोपजीविना प्रच्छन्न वंचकास्त्वेते येस्तेनाटविकादय। जो ओपन चोरी करते हैं वो व्यापारी बा वो लोग जो लोगों को सामान से ज्यादा रेट में बेच, जो जो लीगल रेट है उसे ज्यादा में बेचते हैं, जिस चीज के लिए पैसा लेते हैं वो चीज ना देकर उसे खराब चीज देते हैं, या जरूरत से जितना उनको लाभ कमाना चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा कमाते हैं, वो भी चोरी में आता है। आप कह सकते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक तरह के चोर हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचते हैं और 200 रुपए चैरिटी को दान दे करके अपने आप को बड़ा धर्मार्थ समझाते हैं, पब्लिक तो मान जाती है, पर वस्तुतः आप एक तरह के लूट करते हैं। जब फ्री की पानी लेकर के आप सिर्फ उसको प्यूरिफाई करके प्लास्टिक बोतल में बेच के उसे 400 गुने रेट में बेचते हैं, अब पब्लिक को यह डर दिखा करके कि नेचुरल पानी पियोगे तो बीमार पड़ोगे, हमारे पानी पियोगे स्वस्थ रहोगे, तो इट्स स्टीलिंग, ये चोरी है, आप हड़पते हो। दूसरी तरह के चोर जिसको हम जानते हैं, चोर है, डाकू है, बदमाश है, जो आपके घर तोड़ के चोरी करता है, मनो स्मृति में मनो कुछ और ज्यादा दूर तक जाते हैं चोरी को थोड़ा और ज्यादा डिफाइन करने के लिए। और बहुत सारे चोरी की जो लिस्ट आप पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ चीजों के बारे में आप बड़े हकबका भी रहेंगे, परेशान भी होंगे, पर यह मनोस्मृति की स्टेटमेंट है। देखिएगा, उत्कोचकाश्चोपाधिका वंचका की तवास्तथा मंगलादेश वृत्ताश्च भद्राश्च क्षणिकैः असम्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकः शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणः पण्ययोषितः। मुझे नहीं पता अमेरिका में ये कल्चर थोड़ा कम है, पर भारत में ज्यादा है, ब्राइब लेना और देने की, रिश्वत लेने और देने की। और ये बड़ा व्हाइट कलर्ड क्राइम है, मतलब इसमें कोई किसी को चोर नहीं कहता, उल्टा ब्राइब लेने वाले के कुछ ज्यादा इज्जत होता है हमारे देश में। उसके बेटे या बेटी के लिए शादी करने के लिए बड़े बड़े घर के रिश्ते आते हैं, क्योंकि इसके पास पैसे ज्यादा है। और जनरली ये एक कहावत होती है कि आपकी ऊपरी कितनी है, ये एक इंडियन सोसाइटी में शादी के पहले जो लड़का ढूंढते हैं तो ये सवाल जरूर होता है, खास करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में, कि उसकी ऊपरी कितनी है। ऊपरी का मतलब जो उसका लीगल कमाई है उससे ऊपर इलीगल वो कितना कमाता है। मनो कहते हैं ये सब चोर में जाते हैं, जो चीट करता है, जो रॉब करता है, जो गैम्बलिंग से पैसा कमाता है, और जो सेंटिमोनियस हिपोक्रेट्स हैं, सूथसेयर्स हैं, ये जो ज्योतिषी हैं, ये कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये मनुस्मृति मनु कहते भाग्य बताने वाला, भविष्य बताने वाला, हाथ देखने वाला व्यक्ति भी चोरी में काउंट होते हैं, चोर में। इट्स नॉट माय स्टेटमेंट, माइंड इट। तो क्या कहते हैं, जो शुद्ध शेयर्स हैं, फॉर्चून टेलर्स हैं, जो पामिस्ट हैं, वगैरह, आज तो उसके काफी सारे आज तो सब आ गए हैं, ये जो रत्न, सुबह सुबह आप इंडियन चैनल खोल दो, न्यूज चैनल भी यही मिलेगा कि शनि के दिन आप सरसों के तेल में क्या करोगे, कि ये कौन सा पत्थर पहनोगे तो आपके बिजनेस चलेंगे, वगैरह वगैरह। मनुस्मृति के आधार, धर्मशास्त्र के आधार पर दे ऑल आर थीव्स, मेन ऑफ सीक्रेट वाइसेस, ऑफिशियल्स ऑफ हाई रैंक एंड फिजिशियंस हु एक्ट इम्प्रॉपरली, ऊंचे पद पर बैठने वाले या समाज की सेवा में लगने वाले लोग, पब्लिक सर्विस में जो भी लोग हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े लोग, जो इम्प्रॉपर बिहेवियर करते हैं, जो इलीगल काम करते हैं, मतलब अपने प्रोफेशन को ठीक ढंग से नहीं करते या उसका गलत इस्तेमाल करते, वो भी उसी कोटि में आते हैं। मेन लिविंग बाय शोइंग देयर प्रोफिशियंसीज इन आर्ट, क्लेवर हट एक्सेट्रा। अगला देखिए, एवं आदिन विजानीयात प्रकाशान लोक कंटकान निगूढ़चारिणश्चान्यान अनार्यलिंगिनः। और इस तरह के और एक चोर होते हैं जो अच्छा आदमी नहीं है, एंड ही नोज दैट ही इज नॉट ए गुड पर्सन, बट ही प्रिटेंड्स दैट ही इज ए गुड पर्सन, जो बुरा होकर भी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, जो बेईमान होकर भी अपने आप को ईमानदार दिखाने की कोशिश करता है, जो जैसा नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है पर अपने आप को ज्ञानी दिखाने की कोशिश करता है, जो जैसा नहीं है उससे अच्छा दिखाने की जब कोशिश करता है, ये सब चोरी में। आप कहेंगे इनको चोरी में आप क्यों काउंट करते, क्योंकि ये सब किसी ना किसी को किसी बहाने लूटते हैं, किसी ना किसी बहाने दूसरे के सामान को हड़पते हैं, जो लीगल नहीं है, जो एक्यूरेट नहीं है। तो मनु कहते हैं कि इन सारे लोगों को राजा या उनके जो कर्मचारी है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो उनको इस कैटेगरी में रखे और ये पब्लिक के लिए कांटे की तरह हैं, थ्रोन की तरह है, उनको दूर करने की कोशिश करें। एक दूसरे तरह की भी चोरी होती है जिसको हम कहते हैं साहित्यिक चोरियां, यूनिवर्सिटीज में बहुत होता है, कॉलेज वगैरह में बहुत होता है, पढ़े लिखे लोग ये चोरी ज्यादा करते हैं, दूसरे की किताब से उतार के अपने नाम पर छाप देना, दूसरे की चीज को अपने नाम पर बता देना, ये जो लिटरेचर की जो जो चोरी होती है, ये कॉमन लोगों को इसमें ज्यादा जानकारी नहीं, पर जो जो एजुकेशन फील्ड में उनको ज्यादा जानकारी है, कैसे बड़े बड़े प्रोफेसर अपने अंडर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स की रिसर्च पेपर को खुद के नाम पर छाप देते धमका करके, कैसे कैसे सो कॉल्ड जो ज्ञानी नहीं है पर अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए किताब छापते हैं और इधर उधर से 10-20 जगह से उठा के अपने नाम पर छाप देते हैं, दे आर ऑल्सो द थीव्स। जब वर्कर को काम में रख करके उनको जीतने के लिए आपने कहा उतना पैसा ना दे करके, जो उनके लीगल राइट है उसको ना दे करके किसी भी कारण आप उनको उनको मिसयूज करते हैं, वो भी चोरी है। जैसे यूरोप और अमेरिका में जो लोग इलीगल आते हैं, मतलब प्रॉपर वे से नहीं आते हैं, वीजा नहीं है या किसी कारण नहीं है, किसी तरह आते हैं, उनके उन्हीं के देश के लोग जो सेटल्ड हैं अमेरिका में या यूरोप में, वो उनको एक तरह के लूटते हैं, उनको एक तरह के बंधुआ मजदूर बना के, जो मान लीजिए जो एक रेट है कि भाई $8 पर आवर देना चाहिए मिनिमम, वो उनको $2 में $1 में भी काम कराते हैं। लंदन में ये ब्रिटेन में इंडियन लोगों के साथ ब्रिटेन में बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग इलीगली काम ढूंढने के लिए भागते हैं और पता चला कि लंदन में और इंग्लैंड के ब्रिटेन के बहुत सारे शहरों में ये जो रिच इंडियंस है जो पहले से वहां सेटल्ड है, उनकी अपनी नेट वो उनके पास उनको अपने घर में रखते हैं, अपने घर पीछे किसी गैरेज वगैरह में एक छोटा सा रूम दे देते हैं फ्री में, नहीं उनको सेव करने के नाम पर, बचाने के नाम पर उनसे मोटा जो जो किराया है रेंट असूलते हैं, उनके खुद के घर में काम कराते हैं या कंपनी वगैरह में काम कराते हैं, पैसा जब जब पता चला सैटेलाइट फोटो लेकर के पता चला कितने बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व है, उनको जहां $100 देना चाहिए वहां उनको $2 भी नहीं मिलता था, खाने को जैसे भारत के गांव में भी तड़पाते थे उसी तरह, और वो कौन थे, इंडियन जो पहले आए हुए हैं वो लूटते थे जो अभी अभी आए हुए हैं। अमेरिका में भी आप देखेंगे मेक्सिकन है बाकी लोग हैं, तो उन्हीं के खुद के जात के लोग उनको लूटते हैं कम पैसे दे करके, क्योंकि उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ये भी एक तरह के चोरी है। क्रेडिट कार्ड यूज करके पैसा नहीं दे करके शहर बदल देना, ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, क्रेडिट कार्ड की चीटिंग वगैरह। और सबसे बड़ी चोरी और ऊपर से जो हिंदी में के चोरी और सीना छानी, ये देखा जाता है जो जो बहुत ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए जो लीडर्स हैं, जो जो मैनेजर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो इकोनॉमिकल क्राइम करते हैं कंपनियों में, शेयर मार्केट में, जो रातों रात बिलियंस कमा लेते हैं कंपनी को चुना लगा के, पब्लिक को चुना लगा के, ये सब चोरी की कैटेगरी में आती है। चोरी एक एटीट्यूड है, अगर मुझे लगता है कि मैं किसी भी तरह मुझे पैसा कमाना है कुछ भी हो जाए, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे बड़ा बनना है, इस तरह की जब एटीट्यूड हम पालने लगते हैं तो चोरी हमारे लिए कोई इमोरल एक्टिविटी के रूप में हम काउंट नहीं करते, हमारे मन में कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होती है, कोई बुरा नहीं लगता अगर हम किसी को यूज करते हैं, किसी को जो जो प्रॉपर देना चाहिए वो नहीं देते हैं, या सरकार को, समाज को, पब्लिक को हम ठगते हैं, तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये जो एटीट्यूड है कि मुझे कुछ भी करके आगे बढ़ना है, बड़ा होना है, ये बहुत बड़ा कारण है ये बड़ी बड़ी चोरियों में। छोटी छोटी चोरियों में कारण होता है कि मैं भूखा हूं, परेशान हूं, वगैरह वगैरह, फिर ये भी एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है। पर दुनिया में चोरी के कारण ज्यादातर जो डिसऑनेस्टी है वो बड़े लेवल में दिखता है, छोटे लेवल में कम दिखता है। छोटे लेवल में कभी कभी मजबूरी डिसऑनेस्टी का कारण होता है, बड़े लेवल में लालच उसका कारण होता है। बच्चे जब स्कूल में चीटिंग करते हैं एग्जामिनेशन में, या अपने नीचे के लोगों को जब हम मैनिपुलेट करते हैं अपने काम के लिए, तो ये सब सिर्फ इसीलिए कि मुझे कुछ भी करके आगे बढ़ना है, मैं जितना मेरी जो 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 कैपेसिटी है, जो मेरा सामर्थ्य है, मुझे उसमें भरोसा नहीं है। मेरा सामर्थ्य अगर अगर सिर्फ 12th पास करने तक की है, पर मुझे बहुत आगे जाना है, मैं पढ़ना आता है नहीं आता है, पर मुझे मास्टर की डिग्री चाहिए, तो इस तरह की जो एटीट्यूड है ये चोरी की भावना को बढ़ावा देता है। एक दूसरे किस्म की चोरी है, ये तो हुआ इंडिविजुअल चोरी। जब सोसाइटी चोरी करता है, जब एक देश चोरी करता है, इसको हम इंपेरियलिज्म कहते हैं। यूरोप के देशों ने सैकड़ों सैकड़ों सालों तक अफ्रीका से लेकर के एशिया तक देशों को कॉलोनी बनाया, लूटा, खसोटा, स्लेव बनाया और धन संपत्ति लेकर अपने देश में रखे। एक देश तो चोरी नहीं कर सकता। ये जो इंपेरियलिज्म है, अपने आप को दुनिया में हर जगह साबित करना, ये कलेक्टिव चोरी का, कलेक्टिव थेट का एक स्वरूप है। और हम सब जानते हैं, हमारा खुद का देश सैकड़ों सालों तक तो गुलाम रहा। 16th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक सारे ज्यादातर यूरोपियन नेशन जो है इसी चोरी में इन्वॉल्व रहे। किसी ना किसी देश को कब्जा करो, उसके धन वहां के गरीब अनपढ़ लोगों को यूज करके वहां धन कमाओ, अपने देश में लूटो। जब स्लेवरी को दूर करने के लिए ब्रिटेन में या अमेरिका में जब 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 आंदोलन चला, तब आप लोग जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानते हैं, आपको पता है कितने लोगों ने उसके खिलाफ बोल, सिर्फ इसीलिए कि ये जो चोरी करने से जो एक शॉर्टकट हुए है कमाने का, वो बंद हो जाएगा। और आज भी वो इंपेरियलिज्म का, वो जो देश को कब्जा करने का सिस्टम तो खत्म हो गया, पर आज एक दूसरे टाइप की जो कलेक्टिव चोरी दुनिया में चलता है, जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म। जो पावरफुल देश हैं, जो वो कैसे अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और सेमी डेवलप्ड देशों को धमका धमका करके अपने सामान अपने देश में बिकवाते हैं और उनके सामान को अपने देश में घुसने नहीं देते हैं। ये जो डेवलप्ड नेशन की जो 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 एक एटीट्यूड है, वो कलेक्टिव थेट को ही रिप्रेजेंट करता है। और बहुत सारे देशों में जो डिक्टेटर्स हैं, अपने ही प्रजाओं को लूट के खुद धनी बनते हैं। अफ्रीका के बहुत सारे गरीब देशों के, अरब के बहुत सारे गरीब देशों के जो जो शेख हैं, या अफ्रीका के जो डिक्टेटर्स हैं बहुत सारे देशों के, वो खुद के ही प्रजाओं को लूटते हैं और खुद दुनिया के सबसे बड़े बादशाह बनते हैं। एक तीसरे किस्म की चोरी जो ये 16th सेंचुरी में जब साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगा और हमारे डेली लाइफ में जब ये टेक्नोलॉजी आने लगे, तो हम चोरी की डेफिनेशन को थोड़ा बदलना पड़ा। मनुस्मृति होता, आज मनु होते तो इसको अपडेट कर देते, पर ये हमारा काम है कि इसको अपडेट करना। चोरी का लक्षण आपने पढ़ा था, दूसरों के सामान को, जो दूसरों का हक राइट है, उसको छीनना। जब हम इस नेचर में जो जो भी नेचुरल वेल्थ है इस धरती के नीचे, माइनिंग है, मिनरल्स हैं, जो कुछ भी है, बाजो जंगल है, उसको सिर्फ 200 साल में हम बहुत ज्यादा भोगने के चक्कर में हमारी जो अगली पीढ़ी है, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। क्या ये एक चोरी नहीं है कि आप ईश्वर ने तो सबके लिए दिया, लाखों सालों के लिए, लाखों सालों तक के, लाखों लाखों सालों तक आने वाले जनरेशन के लिए ईश्वर ने बना कर दी, उसको अगर 100-200 साल में हम सारा खा जाएं, और हमारी जो तीसरी पीढ़ी आने वाली है या दूसरी पीढ़ी, उनके लिए कितनी मुश्किलें होंगी, क्या ये एक तरह की चोरी नहीं है कि हम उनके हक को छीन रहे हैं? ये जो क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हैं, ये भी इसी तरह का इंडिविजुअल, कलेक्टिव या साइंटिफिक चोरी का एक नमूना है। जब हम जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं, जब हम एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, जब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को खत्म करते हैं, कोयला हो, पानी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जरूरत से ज्यादा यूज करके, तो हम अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं। ये भी एक तरह की बड़ी चोरी है। चोरी का क्या, अब हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई चोरी करता है तो क्या फर्क पड़ता है? जब शुरू शुरू में हम करते हैं इस तरह के माइंडसेट लेकर, तो थोड़ी बहुत गिल्टी फीलिंग होती है, पर धीरे धीरे वो आदत पड़ जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग पूरी तरह वो जो चोरी की जो भावना है वो उसको निगल लेता है, और हमारी हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे थॉट, इन ये सारे अंधेरे में ढक जाते हैं। हमारा हृदय ज्यादा छोटा हो जाता है, दिल छोटा हो जाता है, हम दूसरों के बारे में छोटना कम कर देते, सोचना कम कर देते, ये जो यूनिवर्सियल सोच है अपने पड़ोसी के बारे में सोचना, वो कम होने लगता है। अब जो सेल्फ कंट्रोल की जो एटीट्यूड है वो हमारे हाथ से खिसकता जाता है, हम अपने आप को कंट्रोल करने लायक रहते नहीं, अब हम खुद अपने से कंट्रोल होने लायक नहीं होते हैं, जब हमारे में इस तरह के नेचर होता है। चोरी करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ये एक, क्योंकि मेंटल एटीट्यूड है, जरूरी नहीं कि हम चोरी करते हैं, अगर चोरी करके सोचते हैं पर करते नहीं है तो भी चोरी है। जैसे हम पिछले बार भी चर्चा किया था, हम नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, चाह कर भी, क्योंकि उनको सोसाइटी का प्रेशर है, पुलिस का डर है, कानून का डर है, वगैरह वगैरह, पर अगर मन में यह विचार आता है तो भी हम उस बीमारी से ग्रस्त हैं। और चोरी जो डिसऑनेस्टी है वो व्यक्ति को अंदर से खोखला बनाता है, उसकी मोरलिटी खत्म हो जाती है, तो बाकी सारे जितने भी इमोरलिटी है वो अपने आप हमारे अंदर शरण ले लगते हैं, वो कंप्रोमाइजिंग स्थिति में हम आ जाते हैं, हर बुरी चीज को एक्सेप्ट करने की बीमारी हमारे अंदर आ जाती है। और अध्यात्म में, इसीलिए योग में इसी को बहुत बुरा माना गया, इसे रोकने की कोशिश किया गया। मन की पवित्रता बड़ी जरूरी है, तो ऐसा लाइफस्टाइल जो हमें वो अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचाए, ब्रह्मचर्य का जो हम अर्थ समझते हैं वो सेलिबेसी है। दोनों में क्या रिलेशन है? क्योंकि इंसान का ज्यादातर समय खाने पीने को छोड़ के इसी चिंता में गुजरता है, सेंसुअल प्लेजर, करे या ना करे, अगर इसको नियंत्रण किया जा सके तो जो अध्यात्म, जो जो ईश्वर को पाने की, आत्मा को पाने की जो प्रयास है वो ज्यादा आसान होता है। या तो दूसरे ढंग से कहे, जो व्यक्ति अध्यात्म में ईश्वर प्राप्ति में विलीन होता है और सीरियसली गंभीरता से सचमुच दिल से इन्वॉल्व होता है, उसकी इस तरह की कामनाएं वासनाएं अपने आप काम होती जाती है। तो ब्रह्म में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शादी ना करने का नाम नहीं है। हमारे जो एक प्राइम मिनिस्टर थे भारत में, अटल बिहारी वाजपेयी, वो शादीशुदा नहीं थे। उनको ये मीडिया वालों ने पूछा कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो फट से रोका, ब्रह्मचारी क्यों कहते हो भाई? बोले आप तो बोलो ना बैचलर हूं। वेरकली मी सेलिब्रेट। उन्होंने एक्सेप्ट करते हैं कि ब्रह्मचर्य और जो शादी ना करना, एक अनमैरिड पर्सन और सेलिब्रेट, टू डिफरेंट थिंग्स। एक शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य हो सकता है और होते हैं। आप अगर अपने सेंसेस को रोकते हैं, रेगुलेट करते हैं, आप ब्रह्मचारी हैं। आप शादीशुदा हैं नहीं है, दैट डजंट मैटर। और सच बात तो यह है कि जितने भी सेक्सुअल ऑफेंड, ज्यादातर तो ब्रह्मचारी लोग ही करते हैं। कौन? फादर्स, नॉन्स, स्वामी जी, बाबा लोग यही करते हैं। सारे नहीं, पर उनकी संख्या कोई बहुत कम नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का शादीशुदा होना ना होना से बड़ा काम संबंध है। ये इट मींस एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल थॉट्स एंड डिजायर। उस सोच से मुक्ति पाने का नाम ब्रह्मचर्य है, न कि उस एक्टिविटी से छूट पाने का नाम ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य के बारे में एक बहुत गलत फहमी है, अपनी वासनाओं को दबाने का नाम ब्रह्मचर्य का नाम दिया गया। इट्स नॉट सप्रेशन ऑफ द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। ये स्वाभाविक है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जो भी पैदा हुआ है, उसके अंदर ये इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ये स्वाभाविक है। खाना खाना, भूख लगना, प्यास जाना, प्यास लगना, जैसे स्वाभाविक है, तो ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप अगर खाने को दुबला होने के चक्कर में डाइटिंग करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम होता है? दुनिया भर के बीमारी पाल के बैठते हैं अंदर, जो दुबला पतला होने के लिए खाना छोड़ देते हैं। आगे जाकर उनके बॉडी में 50 तरह की बीमारियां होती हैं। और दूसरी प्रॉब्लम होती है, कभी भी गलती से डाइटिंग से उनका मन उबा, तो वो इतना खाते हैं और ऐसा खाते हैं कि जो डाइटिंग में छोड़ा था उसके चार गुना खा जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ब्रह्मचर्य को समझने के लिए। अगर आप जबरदस्ती रोकते हैं, तो या तो आपकी मानसिक और शारीरिक बीमारियां बढ़ेंगी, और यह पूरी संभावना है जब भी मौका मिलेगा आप बिल्कुल भ्रष्ट होंगे। ब्रह्मचर्य में इंद्रियों को दबाना ये उद्देश्य नहीं था। इट नॉट दैट बट इज वांटेड। क्योंकि जिसको भी आप रोकेंगे वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढेगा बाहर निकलने के लिए। हमारे एक गुरुजी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, वेद के शास्त्रों के, और बड़े नैष्ठिक थे। नैष्ठिक मतलब पूरी जो भी रिलीजियस जो भी रूल्स हैं सबको फॉलो करते थे। घर में उनके सुबह शाम यज्ञ होना, पूजा पाठ होना, खाने से पहले ये मंत्र बोलो, उसके पहले ये करो, पैर दिन में चार बार नहाना, जितने भी प्राचीन परंपरा सब निभाते थे, और अपने बच्चों को भी पूरा फॉलो कराते थे। और उनका बच्चा पास में कॉलेज में बीए पास किया, उसको पढ़ने के लिए दूसरे बड़े शहर में भेजा, दिल्ली भेजा। दिल्ली में अब बीए पास करने का मतलब 20-21 साल का लड़का है। उसका थोड़ा ध्यान रखने के लिए उनके कोई मित्र प्रोफेसर दिल्ली किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में थे, उनके साथ रखा।
कुछ दिनों के बाद वो प्रोफेसर साहब, उनकी नौकरी बदल गई, वो और कहीं चले गए, लड़का अकेले रहने लगा। दो चार महीने के बाद पता चला दुनिया में ऐसा कोई गंदी हरकत नहीं जो वो नहीं करता है, ऐसा कोई खाना नहीं वो जो नहीं खाता है, दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको वो नहीं खाता है, ऐसा कोई पीने लायक चीज पीना नहीं जिसको वो नहीं पीता है, ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं करता है। पर उसके पिता ने उससे 21 साल तक पूरी निष्ठा के साथ पूरी तरह संस्कारी बना के पाला था, पर जैसे ही पिता की छाया हटी, वो सब कुछ 100 गुना 200 गुना ज्यादा किया जो उसको मौका करने को नहीं मिला था। सप्रेशन जब भी आप करेंगे, खुद करें या दूसरे आपको कराए, तो वो आपको बर्बाद करेगा। और हम देखते हैं हमारे साधुओं में, सन्यासियों में, जिस भी धर्म में, जिस भी सेक्ट में, जिस भी सोसाइटी में ब्रह्मचर्य को कंपलसरी, जिस भी प्रोफेशन में कंपलसरी करा गया, वो सब करप्ट हुआ। और हे, क्योंकि ये इट्स नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ सप्रेशन, इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ एटीट्यूड। व्यक्ति के मनोदशा को बदलने की जरूरत है। ब्रह्मचर्य का अर्थ था कि आप अपने आप को ऐसा इन्वॉल्व रखो कि आपका मन ही ना हो। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारत के, हिंदू धर्म के जितने भी आप पुराने ऋषि मुनियों को देखिए, पुराने ऋषि मुनि, ये पिछले 1000 साल का छोड़ दीजिए, लाखों करोड़ों ऋषि मुनि, जितने भी आप पुराण पढ़ते हैं, जानते हैं, जितने ऋषि मुनियों का नाम जानते हैं, सब शादीशुदा थे, ऑल वेयर मैरिड। ये जो सो कॉल्ड ब्रह्मचारी सन्यासी का कंसेप्ट हिंदुइज्म में आया, हिंदू धर्म के बिगड़ने का यह भी एक कारण है। मनुस्मृति कहता है, और जिसको महर्षि दयानंद कोट करते हैं, कि ब्रह्मी भूत्वा गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। जो जीवन के जो लाइफ स्टेजेस है, हर व्यक्ति को पहले स्टूडेंट लाइफ में जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन। हाँ, यह है कि स्टूडेंट लाइफ में आपको 100% ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप फिजिकली मेंटली ठीक रहना चाहते हैं मुरली, तो आपको अपने विद्यार्थी काल में जरूर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सारे शास्त्र इसका उपदेश करते हैं। इसीलिए विद्यार्थी काल को, स्टूडेंट लाइफ को ब्रह्मचर्य काल बताया गया। ये आपके लिए पहला शर्त है कि इस एज में आप इस तरह के सेंसुअल प्लेजर की एक्टिविटीज में शामिल मत होइए, ना मेंटली ना फिजिकली। पर उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में जरूर जाइए, फिर आप वनप्रस्थ में जाइए, फिर सन्यासी बनिए। तो हमारे धर्मशास्त्र लिखते हैं, जिन लोगों के अंदर जन्म जन्मांतरों का संस्कार हो कि उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई वासना नहीं, कोई अंदर से कोई इच्छा ही नहीं है, वो सीधे ब्रह्मचारी से सन्यासी बन सकते हैं। पर 99.99% लोगों को जरूर विवाह करना चाहिए, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत जिंदगी भर पालन करने की जरूरत नहीं है, पर दे हैव टू लिव विथ रेगुलेटेड लाइफ। इसीलिए देखेंगे, जैसे आप चर्चों में देखते हैं, जो दुर्दशा आप देखते हैं, दुनिया के हर देश में ये जो मिशनरी की ये प्रॉब्लम है कि फादर्स नॉन्स को कैसे कंट्रोल करें। और जब से हिंदू धर्म में ये सो कॉल्ड आजीवन ब्रह्मचारी सब आने लगे, वो चींटियों के माला के तरह जहां देखो हजारों लाखों में मिल जाते हैं, ये एक खतरनाक ट्रेंड है, इट्स ए डेंजरस ट्रेंड। आप अपने आप को सप्रेस करते हैं बस। आगे करो, बस एक और बात करके खत्म करते, रोल ऑफ एटीट्यूड इन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में इसीलिए एटीट्यूड का रोल होता है, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम अपने मन, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, किसी भी सेंसुअल प्लेजर को, अपने मन या इंद्रियों को रोकने के लिए एक ही उपाय है कि मन में उसके उसके बारे में नेगेटिविटी लाया जाए, न कि आप अपने इंद्रियों को रोकें। अगर किसी का मीठा छुड़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ उसके मन में भरे मीठा की बुराइयों के बारे में, मीठा ना खाने के अच्छाइयों के बारे में, कि वो कन्विंस्ड हो जाए, उसका कन्विक्शन हो जाए कि मीठा खाना बुरा है, तो वो अपने आप छोड़ देगा। पर अगर आप जबरदस्ती रोकते हैं या खुद जबरदस्ती रोकता है तो एक ना एक दिन वो इतना मिठाई खाता है तो बेड पर पड़ा रहता है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है, अगर आपको ब्रह्मचर्य पालने का शौक है तो अपने माइंड को बिजी रखिए कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में, अच्छे शास्त्रों को पढ़ने में और ईश्वर भक्ति में। यह बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि ये आपको खुराक जुगाते हैं कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल रखें। इसीलिए हमारे यहां एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। कहते मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। दुनिया में सभी, वन हु कंसिडर्स अनदर स्वाइफ एज हिज मदर, अनदर पोसेशंस एज ए लंप ऑफ डर्ट, एंड ट्रीट्स ऑल लिविंग बींग्स एज ही वुड हिमसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी ए वाइज मैन। ये क्या है? एक एटीट्यूड अपनाने की एक कला है कि आप ऐसा एटीट्यूड रखो कि मेरी पत्नी के अलावा दुनिया में सभी मेरे मां जैसी है, तो अपने आप आपकी ब्रह्मचर्य नियंत्रित, ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। ये प्राचीन काल के ऋषि मुनियों को भी ये परेशानी थी, इसीलिए वो उस पर जोर देते थे। सप्रेशन जस्ट क्रिएट्स ए हिपोक्रेसी। इसीलिए कन्विक्शन बड़ा जरूरी था, आप मन में क्या मानते हैं। अगर आप मन में किसी को रेस्पेक्ट नहीं करते, ऊपर से जबरदस्ती रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो आपका बॉस है, तो वो रिटायर्ड होने के अगले दिन आप उसको गालियां देना शुरू करेंगे। यही लाइफ हमारे हर इंद्रियों को रोकने में यही फिलॉसफा काम आता है। ब्रह्मचर्य की थोड़ी बहुत बातें और आगे अगले बार भी करेंगे। अगला जो है अपरिग्रह, उसकी चर्चा हम अगले बार करेंगे। इसी के साथ यहां विराम लेते हैं। अब